That's true. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो आज के लिए हम इस क्लास के अंदर तहसीन बहश्ती जेवर से किताबुल वसीयह वल मीरास का इजाफा पढ़ रहे हैं, यानी किताबुल वसीयह वल मीरास में से हमने चंद मसाइल पढ़े और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ करके उसके इजाफे के ऊपर आ गए. बाकी मसाइल हमने कहा था कि बाद में आपको पढ़ाए जाएंगे इंशाल्लाह. तो इजाफे में भी हमने शुरू के चंद रुनवानात पढ़ लिए थे और आज जो है वो पेज नंबर 324 के ऊपर पढ़ना था जो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ होगा. तो 324 सफ़े के ऊपर फरमाते हैं कि जहेज और मेहर में विरासत. जहेज और मेहर में विरासत, तो शादी के वक्त जहेज़ क्या होता है? शादी के वक्त जो लड़की के माँ बाप उसको कुछ देते हैं, माल देते हैं, सामान देते हैं, फर्नीचर, कपड़े वगैरह, जो कुछ उसको दे करके माँ बाप रुख्सत करते हैं उसको जहेज़ कहा जाता है. और मेहर जो है वो मकदार होती है माल की, कोई ऐसी मकदार के जो के निकाह के वक्त तय की जाती है कि लड़के वाले यानी दुल्हा जो है वो इसको लड़की को देगा. ठीक है, ये वाजिब है, निकाह का हिस्सा है ये मेहर. ठीक है, तो फरमाते हैं कि शादी के वक्त लड़की को जो जहेज दिया जाता है और उसका जो मेहर है वो सब लड़की की मिल्कियत है. उसकी मौत के बाद लड़की के वरासा में तकसीम होगा. ठीक है, मौत एक ऐसी हकीकत है जो कि शादी भी नहीं देखती कि अभी तो घर में शादी हुई है तो अभी मैं ना आऊं यहाँ पर या मैं रुक करके आऊं. मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, शादी के वक्त भी आ सकती है, शादी के दिन भी आ सकती है, शादी के फौरन बाद भी आ सकती है और किसी भी वक्त उसके बाद आ सकती है. तो शरीयत तो मौत के बाद का भी मामला बताती है ना, सिर्फ शादी का तरीका नहीं बताती बल्कि यानी ज़िंदगी का तरीका, खुशियों का तरीका नहीं बल्कि गम के हालात में क्या करना है तो वो भी बताना शरीयत का हिस्सा है. तो मेहर जो होता है, अच्छा पहली बात तो है ना जहेज, तो जहेज तो माँ बाप ने दिया, लड़की को दिया. ठीक है, अगर वो लड़के को कुछ दे रहे हैं तो फिर वो लड़के को वो उसको जहेज नहीं कहते हैं. नहीं, उसको लड़के को हिबा कर दिया या पता नहीं उसको कोई उसका नाम है कि नहीं है, लेकिन वो लड़के को हदिया किया. लेकिन लड़की को तो जहेज, जो जहेज है वो लड़की को दिया जाता है तो वो तो उसी की मिल्कियत है. और मेहर के बारे में भी बात बिल्कुल साफ सुथरी है, क्लियर है, पीछे भी हम उसके ऊपर काफी बात कर चुके हैं कि वो तो लड़के के ऊपर वाजिब होता है जब तक कि वो उसको पूरा अदा ना कर दे. इसमें फिर एक मसला जो है ना वो आता है मेहर में जेवर देने का. ठीक है, अच्छा ये लोगों के यहाँ तो बड़ी सारी कॉम्बिनेशंस चलती हैं कि कोई जो है वो जेवर की शक्ल में मेहर दे देते हैं, कोई रकम की शक्ल में मेहर दे देते हैं, कोई सिर्फ सोने की शक्ल में यानी जो से जेवर के फॉर्म में नहीं होता, सिर्फ कोई किसी और फॉर्म में होता है सोना, जैसे यानी बिस्किट्स के फॉर्म में हो या क्या फॉर्म होती है. तो ग्राम के हिसाब से सोना दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के यहाँ जो है ना वो सोना देने का रिवाज होता है, तो उसकी बड़ी तफसीलात हैं, उसके ऊपर बड़े फतावा पूछे जाते हैं कि जी लड़के वाले जो है वो लड़की वालों को सोना दे देते हैं, तो अगर तलाक हो गई या इंतकाल हो गया तो फिर वो सोना किसकी मिल्कियत होगा। ठीक है, तो उसमें फिर जो मुफ्ती हजरात ने पता फतवे दिए हैं उसमें यही है कि ये ना जेवर का मामला डिफरेंट है। ठीक है, जेवर का मामला जो है वो डिफरेंट है कि वो लड़के वालों के रिवाज के ऊपर डिपेंड करता है, कि यानी ये यानी लड़के वालों ने जो कोई और चीजें दी ना लड़की को, तो वो तो लड़की की मिल्कियत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जेवर के बारे में ऐसा नहीं है। ठीक है, जेवर के बारे में अगर उन्होंने मिल्कियत की सराहत करके यानी एक्सप्लिसिटली कहा है कि जी ये हम आपको हिबा कर रहे हैं, ये हम आपको दे रहे हैं, तो फिर तो वो लड़की का होगा। लेकिन अगर बाकायदा कहा नहीं है ना, तो फिर उसके बाद अगर कहा नहीं है उन्होंने कि ये जेवर जो है वो आपकी मिल्कियत है, तो फिर रिवाज वगैरह का मामला आता है कि वहां पर क्या उर्फ है, क्या रिवाज है। तो अगर रिवाज जो है वो यानी उस सोसाइटी के अंदर ये है कि लड़के वाले जो लड़की को जेवर देते हैं तो वो लड़की की मिल्कियत हो जाता है, तो फिर तो वो लड़की की मिल्कियत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो लड़के वाले वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ तफसील है। अब या जो ये सोच रहे हैं कि उस तफसील में इस क्लास के अंदर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन एक फतवा है वैसे सामने, उसी को पढ़ लेते हैं। 1 मिनट। तो ने इसको सुन ले कि निकाह के मौके पर लड़की को जो मैके वालों और ससुराल वालों की तरफ से सामान, कपड़े और जेवर वगैरह मिलता है, उसके शरी हुक्म में ये तफसील है कि जो सामान, जहेज, कपड़े और जेवर वगैरह लड़की को मैके वालों की तरफ से मिलता है यानी लड़की वालों की तरफ से मिलता है, वो लड़की की मिल्कियत शुमार होती है। जहेज, कपड़े और जेवर वगैरह जो मैके वालों की तरफ से मिलता है वो लड़की की मिल्कियत शुमार होती है। ठीक है, इसी तरह लड़के वालों की तरफ से जो आम इस्तेमाल की चीजें मसलन कपड़े, जूते, घड़ी वगैरह लड़की को दिए जाते हैं, इसी तरह मुंह दिखाई के मौके पर जो चीज दी जाए ये सब भी लड़की ही की मिल्कियत है। ठीक है, लड़की ही की मिल्कियत है, इसका मतलब क्या है कि यानी क्यों इतनी अहमियत के साथ ये बात बताई जा रही है? इसलिए नहीं कि अब लड़की को चाहिए कि हर वक्त वो इन चीज़ों को पहन करके रखे। ठीक है, जो उसको मैके से मिली है वो हर वक्त उसको पहन के रखे, या हर वक्त उसको जो है वो किसी लॉकर के अंदर लॉक करके रखे, बल्कि मिल्कियत की जो अहमियत है वो किस लिए है कि खुदा ना खास्ता कल को कोई मसला आ गया, जैसे तलाक हो गई, तो अब किसके पास ये सारा सामान जाएगा ना, क्योंकि लड़की तो रुख्सत होकर के लड़के के साथ आके रहना शुरू हो जाती है, चाहे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, चाहे वो लड़का अकेला रहता हो, उसके घर में आके रहनी शुरू हो जाती है। अब तलाक के बाद तो फिर वो अपने माँ बाप की तरफ वापस जाती है। ठीक है, तो वो ये चीजें जो वहां से लेकर के आई थी वो वापस लेके जाएगी कि नहीं लेकर के जाएगी? ये वापस लेके जाएगी क्योंकि ये उसकी मिल्कियत है। ठीक है, उसी तरह खुदा ना खास्ता इनका इसका इंतकाल हो गया, तो इंतकाल में इन चीजों के इंतकाल के बाद इन चीजों के ऊपर विरासत के जो अहकाम जारी होंगे वो क्या होंगे? क्या ये लड़की की विरासत शुमार की जाएगी कि भाई उसके जो वारिस हैं उनको इसमें से हिस्सा मिलेगा, या ये लड़के के मिल्कियत शुमार की जाएगी कि अगर लड़के का इंतकाल हो गया तो उसके जो वारिस हैं उसको इसमें से हिस्सा मिलेगा? तो इसका जवाब क्या है कि लड़की की मिल्कियत है, लड़की की विरासत इसमें जारी होगी। ठीक है, जो लड़की के वारिस हैं, चाहे शौहर उसका वारिस है, उसकी कोई औलाद है वो उसकी वारिस है, तो उनमें शरीयत के अहकाम के मुताबिक उसकी तकसीम होगी। ठीक है, तो इसके लिए मिल्कियत का होना जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। अगर मिल्कियत का ही नहीं पता तो फिर आप कैसे विरासत के अहकाम जारी करेंगे। अच्छा तो ये तो हो गया ना, मैके से जो कुछ भी मिल रहा है वो लड़की का है, ठीक है, लड़की को जो कुछ भी मिल रहा है वो लड़की का है, ठीक है। अब सास ससुर अगर उससे जबरदस्ती ले करके अपने पास रख लेते हैं तो सास ससुर जो है वो गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, और उनको फिर उसके गुनाह के हिसाब से जो पिटाई शिटाई होती है वो फिर उनकी अल्लाह ताला के जिम्मे है, ठीक है, हमारे जिम्मे नहीं है, अल्लाह ताला के जिम्मे है। तो वो करेंगे फिर जो भी करना होगा, और लड़का भी जो है वो उसको नहीं ले सकता कि ये मेरी मेरी मिल्कियत है, तुम इसको जो है वो ऐसे खर्च करो, तुम इसको वैसे खर्च करो, नहीं। ये एक ऐसा मामला है कि शौहर की अताअत जो कि बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, बीवी के ऊपर शौहर की अताअत करना, इसके ऊपर बड़ी हदीसें मौजूद हैं, बड़ा इसके ऊपर अहकामात है कि बीवी को शौहर की अताअत करनी चाहिए, लेकिन इस मामले के अंदर बीवी को शौहर की अताअत करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो करे, नहीं चाहे तो ना करे। क्या मतलब कि शौहर उसको कहे कि तुम्हारा जो ये जेवर है तुम इसको फलानी जगह पे खर्च करो, या तुम इसको जो है वो मेरे हवाले कर दो, ठीक है, तो इसको शौहर की अताअत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, शौहर की इस मामले में अताअत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से बहुत अंधेर नगरी मची हुई है ना, शौहर साहब जो है वो बड़े मजे से कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं कि आप इस बात की मजाज नहीं है, मजाज का मतलब पता है ना, कि आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि आप मेरी नाफरमानी करें, आप इस बात की मजाज नहीं है कि आप जो है वो मेरी इजाजत के बगैर जो है वो फलानी जगह चली जाए, ठीक है। बड़ी माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ये दीन पढ़ा हुआ होता है, बड़ा उनको फिका के बारे में पता होता है कि जी बीवी जो है वो उसकी मजाज नहीं है, बड़े खूबसूरती से प्यार से ये बात कहते हैं, या कभी गुस्से में कहें लेकिन दूसरों को प्यार से बताते हैं कि मैंने तो बड़े प्यार से कहा था अपनी बीवी को कि आप इसकी मजाज नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर उनको यही कहना चाहिए कि आप किस बात के मजाज हैं जिसका कि आप बड़ा ख्याल करते हैं, ठीक है, आप इस बात के मजाज हैं कि जिस चीज का आपको आपको इजाजत नहीं है बीवी से डिमांड करने की, जिस चीज की डिमांड करने की आपको इजाजत नहीं है अपनी बीवी से, तो आप जो है वो क्यों उससे उसकी डिमांड कर रहे हैं। सही, तो भी तो यानी ऊपर से भी तो कोई है ना हमारे ऊपर, ठीक है, जिसने कि हमें किसी चीज की इजाजत दी है, जिसने हमें किसी चीज की इजाजत नहीं दी है, तो ये भी देखना चाहिए कि हम किस बात के मजाज हैं। अच्छा दूसरा मसला कि लड़की को निकाह के मौके पर मेहर के अलावा जो जेवरात ससुराल वालों की तरफ से मिलते हैं उनमें ये तफसील है कि अगर जेवरात देते वक्त ससुराल वालों ने इस बात की सराहत की थी कि ये बतौर आरियतन यानी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हैं, तो फिर ये जेवरात लड़के वालों की मिल्कियत होंगे, ठीक है, क्योंकि जेवरात एक इतनी यानी इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, मॉनेटरी वैल्यू, कि इस चीज को जो है ना फिर अलग से कंसिडर करना होता है कि अगर ये आरियतन दिए हैं तो फिर ये आरियतन का मतलब होता है टेम्पररीली, खाली इस्तेमाल के लिए दिए, तो ये लड़के वालों की मिल्कियत होंगे। और अगर ससुराल वालों ने हिबा, गिफ्ट और मालिक बनाकर देने की सराहत कर दी थी तो फिर इन जेवरात की मालिक लड़की होगी, ठीक है, अगर जेवरात बाकायदा तोहफतन लड़की को दिए हैं तो फिर ये लड़की की मिल्कियत होंगे। अच्छा तीसरी सूरत क्या है कि अगर जेवरात देते वक्त किसी किस्म की सराहत नहीं की थी, जैसे कि आम रिवाज यही है बदकिस्मती से कि मिल्कियत का किसी को पता ही नहीं होता, ना किसी को फिक्र होती है, और खुसूसन ऐसे मौकों के ऊपर, शादी ब्याह के मौकों के ऊपर, तो इस किस्म की बात जुबान पे लाना ये बहुत ही मायूब समझा जाता है कि ये भी तो खुशियों का मामला है, खुशी का वक्त है, तो ये क्या आपने जो है वो अनजानों वाली बातें शुरू कर दी हैं, ये आपने किस किस्म की बातें शुरू कर दी हैं कि ये उसकी मिल्कियत है, ये इसकी मिल्कियत है, ये मैं आरियतन दे रहा हूँ या ये मैं आरियतन नहीं दे रहा हूँ, ये चीजें तो आप जो है ना वो मौत के वक्त देखिएगा, शादी के वक्त इन चीजों को देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस वजह से कोई सराहत करता नहीं है। तो इस वजह से ये वाली सूरत जो है ना वो फिर बहुत ज्यादा पेश आती है कि सराहत नहीं करी थी। तो फरमाते हैं कि अगर जेवरात देते वक्त किसी किस्म की सराहत नहीं की थी तो फिर लड़के के खानदान के उर्फ का एतबार होगा, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं, लड़के की तरफ से आ रहे हैं, तो लड़के के खानदान में जो रिवाज है, जो उर्फ है, ठीक है, उसका एतबार होगा। अगर उनका उर्फ और रिवाज बतौरे मिल्क देने का है या उनका कोई रिवाज नहीं, अगर उनका रिवाज बतौरे मिल्क देने का है, यानी उन लड़के के जो खानदान वाले हैं वो लड़की को जो जेवरात देते हैं वो लड़की को मालिक बना करके देते हैं, ठीक है, तो फिर ये जेवरात लड़की के होंगे। या अगर उनका कोई रिवाज नहीं है तो इन दोनों सूरतों में जेवरात की मालिक लड़की होगी। अगर उनका कोई रिवाज नहीं है, ठीक है, कोई रिवाज नहीं है, फिर भी लड़की मालिक होगी। और अगर बतौर आरियत देने का रिवाज है तो फिर ससुराल वाले ही मालिक होंगे, ठीक है। अगर रिवाज लड़के वालों के खानदान में क्या है कि बतौर आरियतन वो देते हैं तो फिर लड़के वाले ही मालिक होंगे। सही है। अब ये रिवाज है कि नहीं है, कि लड़के वाले सही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये रिवाज है, तो ये कौन फैसला करेगा, ये अल्लाह ताला फैसला करे, ठीक है, क्योंकि लड़के वाले जो है ना वो झूठ भी बोल सकते हैं, और झूठ और सच का जो है वो लड़की वाले इतनी तहकीक करना बहुत ही मुश्किल काम है कि भाई कैसे जा करके लड़के वालों के घर घर आने का रिवाज की तहकीक करें, ठीक है ना। हो सकता है लड़के वाले भी झूठ बोल रहे हो, लड़के वाले के खानदान वाले भी झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब इस किस्म का मामला होता है तो फिर सारे एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है, और उस वक्त जो है वो मौत भी भूल जाती है, आखिरत भी भूल जाती है, अल्लाह ताला तो वैसे ही भूले हुए होते हैं, भुलाए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सारा मामला जो है ना फिर ये अल्लाह के हवाले होते हैं, ठीक है। पुलिस फोर्स तो वैसे भी कोई नहीं है, ठीक है, इस्लामी निज़ाम तो वैसे भी कोई नहीं है कि वो जा करके तहकीक करेंगे, काजी जो है ना वो अपने जासूस भेजेगा, अपने अपने जो है वो इंस्पेक्टर्स भेजेगा तहकीक करने के लिए, महमूद फारूक फरदाना और इंस्पेक्टर जमशेद आएंगे तहकीक करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और फिर काजी साहब जो है वो फैसला करेंगे। ये सब कुछ तो हमारी शामत अमाल सब कुछ ख़त्म हो चुका, ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फैसला करना है, अल्लाह को सब कुछ पता है कि वो क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। अच्छा, अगर शादी में जेवर, इन्होंने कुछ लिखा है डायरेक्ट मैसेज में कि अगर शादी में जेवर पहनने को दिया और कुछ बोला नहीं और बाद में रखने के बहाने ले लिया, कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, बाद में कभी ही नहीं दिया तो। खैर, वो आपको बता चुके हैं पढ़ करके, अभी शायद आपने मैसेज पहले लिख लिया था और वो सूरत बाद में पढ़ी थी, कि अगर उनका रिवाज जो है ना वो आरियतन देने का ही है तो फिर लड़के वाले ही उसके मालिक हैं। अब वो जब उसके मालिक हैं लड़के वाले तो फिर वो उसको वापस ले लें, ठीक है, चाहे वो कुछ ये कह के मालिक लें वापस लें कि जी वो आपके पास से गुम हो जाएगा, इस वजह से हम वापस ले लें, भाई हमारी चीज़ है, हम जो है वो उसकी हिफाजत की खातिर हम अपने पास रखना चाहते हैं तो हम अपने पास रखें, अगर हम समझते हैं कि आप उसकी हिफाजत कर सकती हैं, आपके पास रहना चाहिए तो वो आपके पास रहे। जैसे मिसाल के तौर पर आप बैंक में पैसे जमा करवाती हैं ना, ठीक है, तो अगर आपको इस बात पे शुबा हो जाए कि बैंक वाले जो है ना वो आपके पैसे की हिफाजत नहीं कर सकते, तो अब आप जाकर के बैंक से पैसे निकाल लेती हैं तो बैंक वाले ये तो नहीं कह सकते कि क्यों आप निकाल रही हैं भाई, है, आपने हमें दिए थे, अब आप हमारे पास ही रहने दें, आप क्यों निकाल रही हैं, नहीं, आपके पैसे हैं, आप उसको जब भी चाहें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जेवर जो आरियतन अगर दिया है तो वो लड़के वालों की मिल्कियत है, वो जब चाहे वापस ले लें, ठीक है, लड़की की वो मिल्कियत नहीं है। सही, बाकी ये कि मामलात के अंदर जो दूसरे और बहुत सारी सूरतें भी हो सकती हैं तो उसके लिए फिर मुफ्ती हजरात से रुजू किया जाए, वो अभी हम मजीद नहीं पढ़ रहे हैं। अब अगले पॉइंट के ऊपर हम आ रहे हैं निकाह सानी से बेवा मीरास से महरूम नहीं होगी, ठीक है। यानी शौहर के मरने के बाद अगर औरत दूसरी जगह निकाह कर ले तो भी पहले शौहर के वरासा में शुमार होगी और उसको उसका शरी हिस्सा मिलेगा, ठीक है। आर्यत नहीं, आर्यत, आयन से आर्यतन, ठीक है। अभी कहा था कि आर्यतन का मतलब होता है कि किसी को इस्तेमाल के लिए दिया है आपने, टेम्पोरारिली, ठीक है। टेम्पोररी अंग्रेजी का लफ्ज है लेकिन उर्दू में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो आर्यतन का मतलब, ठीक है। तो शौहर की जिंदगी में ये बीवी थी ना, ठीक है। अगर शौहर ने उसको तलाक दे दी होती, अगर शौहर ने, अब जाहिर है मरने के बाद तो वो तलाक नहीं दे सकता ना, अपनी जिंदगी में उसने उसको तलाक दे दी होती और फिर शौहर का इंतकाल होता, तो फिर ये शौहर की वारिस नहीं बनेगी, ठीक है। अगर शौहर ने तलाक दे दी थी फिर शौहर का इंतकाल हो गया, तो अब शौहर की जो मिल्कियत तकसीम होगी ना विरासत में, वो इस बीवी को नहीं मिलेगी क्योंकि ये उसकी बीवी नहीं रही। लेकिन सारी जिंदगी ये इसकी बीवी रही है और बीवी का इंतकाल हो गया, सॉरी, फिर शौहर का इंतकाल हो गया, तलाक नहीं दी शौहर ने, शौहर का इंतकाल हो गया, ठीक है। तो अब ये उसकी वारिसा है, ठीक है, सीधी सी बात है, ये तो बड़ा आसान सा मसला है। लेकिन अगर शौहर के मरने के बाद इसने अगर दूसरी जगह निकाह भी कर लिया है ना, यानी अब इसका कोई दूसरा शौहर बन चुका है, तो अब किसी के जहन में ये इश्काल आ सकता है, ये गलत फहमी आ सकती है कि भाई अब तो इस औरत का दूसरा दूसरा शौहर है, ठीक है, तो इस वजह से पहले शौहर की वारिसा नहीं बनेगी। तो इसका जवाब दे और आखिरी मसला के वारिस को आख करना, ठीक है। आख करने का मफहूम क्या समझा जाता है हमारे यहाँ, कि विरासत से महरूम कर देना या अपनी जायदाद से महरूम कर देना, ठीक है, किसी अपने शरी वारिस को। तो कहते हैं कि किसी वारिस को बिला वजह विरासत से महरूम करना गुनाह है। हदीस शरीफ में इस पर शदीद वईद आई है, अलबत्ता अगर कोई औलाद या वारिस बेदीन हो, गुनाहों में मुबतला हो या वालिदैन को तकलीफ पहुंचाता हो तो उसको महरूम कर देने से उम्मीद है कि मुआखजा नहीं होगा, यानी सजा नहीं मिलेगी वालिदैन को अगर वो अपने किसी ऐसे वारिस को महरूम करें के जो के वालिदैन को जो है ना वो तकलीफ, ठीक है, तकलीफ की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जिस्मानी तकलीफ पहुंचाता हो या नफसियाती तकलीफ जो है वो गुनाहों के जरिए से पहुंचाता हो, यानी गुनाहगार जिंदगी में मुब्तला हो गया हो और उसके गुनाहों की वजह से जो है वो माँ बाप को जहनी तकलीफ पहुंचती है, ठीक है। तीसरी सूरत क्या है, पहली सूरत हो गई जिस्मानी तकलीफ पहुंचाना, दूसरी सूरत हो गई कि माँ बाप नेक हैं, औलाद जो है वो गुनाहगार हो गई है, ठीक है, बेदीन हो गई है या बददीन हो गई है, दीन तब्दील कर लिया उसने अपना, ठीक है, अकायद जो है वो अपने खराब कर दिए, तो माँ बाप को जहनी तकलीफ पहुंच रही है, ठीक है, क्योंकि माँ बाप खुद तो नेक है ना, अच्छे मुसलमान है ना, लेकिन ये बुरा बन गया। तीसरी सूरत क्या है, तीसरी सूरत के माँ बाप जो है ना वो तो नेक नहीं है लेकिन ये नेक बन गया है, ठीक है, औलाद नेक बन गई है, माँ बाप नेक नहीं है। तो इस सूरत में भी क्या होता है कि माँ बाप को जो है ना वो जहनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये तो टू मच मौलवी बन गया है, इसने तो हर चीज के अंदर जो है ना वो हमारी मानने के बजाय मौलवियों की माननी शुरू कर दी है, ठीक है ना, या अल्लाह रसूल की माननी शुरू, ये कहते तो नहीं है अल्लाह रसूल की माननी शुरू कर दी है, क्योंकि वो कहेंगे तो फिर तो लोग पत्थर मारेंगे उनको शायद, ठीक है, तो इस वजह से ये बात तो नहीं कहते। हाँ इतना जरूर कह देते हैं कि हमारी नहीं सुनता बल्कि मौलवी की सुनता है, या अपने पीर साहब की सुनता है, या अपने शेख साहब की सुनता है, ठीक है, तो वो औलाद नेक बन गई है, माँ बाप नेक नहीं, तो इस सूरत में भी माँ बाप को जहनी तकलीफ होती है, ठीक है। तो किन दो सूरतों में औलाद को विरासत से, औलाद को महरूम कर देने की इजाज़त है? पहली दो सूरतों में, जब औलाद जिस्मानी तकलीफ देती हो, या औलाद जो है वो बददीन बेदीन हो गई हो और माँ बाप नेक हो, तो इन दोनों सूरतों में माँ बाप को आ करने की इजाजत है, ठीक है। तीसरी सूरत के अंदर बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, सही। अच्छा क्या लिख रहे हैं, अगर कोई बीवी सारी जिंदगी रही और उसकी औलाद भी नहीं हुई, हस्बैंड तलाक दे दिए और कुछ ही दिन में कैंसर की बीमारी हो गई और डेथ हो गई, तो क्या करना चाहिए? बीवी को हिस्सा नहीं मिलेगा जी, बीवी को हिस्सा नहीं मिलेगा, तलाक दे चुकी ना, ठीक है, तो मौत के वक्त जो है ना वो उसकी बीवी नहीं थी, यानी जिस वक्त शौहर की मौत हुई है उस वक्त वो उसकी बीवी नहीं थी, ठीक है, तो जब बीवी ही नहीं थी तो फिर हिस्सा किस बात का, ठीक है। अच्छा, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता, तो आग करना जरूरी तो नहीं है? हाँ, ये जो आग करने वाला मामला है ना, ये एक मुहावरा है, ठीक है, लफ्ज जो आग है ना, आग, ठीक है, ये इसकी असल में कोई हकीकत नहीं है, ये असल में जो है ना ये उकूक का लफ्ज है, ठीक है, हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी, ठीक है। अब हमारे मुआशरे के अंदर ये जो लफ्ज आक जो है ना वो महरूम करने के मानी में इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ठीक है, तो असल में है महरूम कर देना, असल में क्या लफ्ज है, महरूम कर देना, ठीक है ना, यानी उसको जो है ना वो ना देना कोई चीज, ठीक है, तो काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता, तो ये आपके सवाल में जो है ना, आग करना जरूरी तो नहीं है, तो आग करना तो कोई चीज ही नहीं होती, ठीक है ना, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अलबत्ता खैर, चूंकि मुहावरे के अंदर जो है वो ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया, इस वजह से किताब के अंदर भी इसको लिखा हुआ है। बहरहाल, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं कि किसी वारिस को बिना वजह मीरास, ये तो हमने पढ़ लिया ना। अच्छा, आँख और महरूम कर देने के दो तरीके हैं, क्योंकि लोगों में राइज हो गए हैं ना ये लफ्ज, इस वजह से उस लफ्ज को भी यहाँ पे इस्तेमाल किया, लेकिन असल लफ्ज है महरूम कर देना, तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि अपनी जिंदगी में ही तमाम माल और जायदाद को उस वारिस के अलावा दीगर वारिसों या दूसरे लोगों में तकसीम कर दे और उनको कब्जा भी दे दे, ठीक है, यानी बाकायदा उनकी ओनरशिप में, उनकी मिल्कियत के अंदर और कब्जे के अंदर दे दे। अब ये कब्जा वगैरह की जो तफसील है ना, ये किताबुल हिबा के अंदर इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, सही है। इस तरह करने से जायदाद उन लोगों की मिल्कियत हो जाएगी और इस शख्स की वफात के बाद इस वारिस को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वारिस का लफ्ज यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि औलाद ही की बात हो रही है आप, ठीक है ना, औलाद 100% वारिस होती है, ठीक है, जो तो चूंकि औलाद तो वारिस होती ही है, तो इस वजह से औलाद का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय वारिस का लफ्ज इस्तेमाल कर दी, ठीक है। तो अगर किसी के जहन में ये बात आ रही हो कि भाई वारिस तो मरने के बाद बनते हैं, जब मौरूस मरेगा तब कोई वारिस बनेगा ना, अगर वो मर के ही नहीं दे रहा तो फिर ये वारिस कैसे बनेगा, है ना, मरे बगैर तो, मौत के बगैर तो विरासत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, जिंदगी के अंदर तो आप हिबा कर रहे होते हैं, तो महूब का कॉन्सेप्ट तो है, वारिस का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी की जिंदगी के अंदर, तो यहाँ पे वारिस का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिंदगी के अंदर ही उसने जो है अपने वरसा को दे दिया, तो वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि औलाद जो होती है ना वो तो 100% वारिस होती ही है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तो वो तो वारिस होती ही है, ठीक है। अब अपनी औलाद में से किसी को जो है ना महरूम करना चाह रहा है, तो उसका तरीका क्या है कि अपने पास जो चीजें हैं वो अपने दूसरी औलाद के अंदर बांट दे, दूसरी औलाद के अंदर ऐसे बांट दे कि उनको बाकायदा कब्जा भी दे दिया है। तो अब इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, अब इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे पिछली क्लास में भी मेरे ख्याल में आपने से किसी ने सवाल किया था कि किसी बाप ने जो है वो अपनी सारी जायदाद दूसरे औलाद के अंदर बांट दी, तो अब जिसका एक बेटा जो है ना वो उसको उसकी विरासत में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमने कहा भाई जब जब बांट दी तो अब तो इनके पल्ले कुछ बचा ही नहीं ना बाकी, तो अब कैसे उसको हिस्सा मिलेगा, कुछ होगा तो हिस्सा मिलेगा ना, अब तो वो किसी और का हिस्सा बन चुका है। तो यही कह रहे हैं कि इस तरह करने से जायदाद दूसरे औलाद की मिल्कियत हो जाएगी और इस शख्स की वफात के बाद उस वारिस को जिसको इसने महरूम करने के इरादे से ऐसा काम किया था उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि जो कि अनफॉर्चुनेटली जहालत की वजह से जहनों के अंदर आई हुई है, दूसरी वाली सूरत। ठीक है, वो दूसरी सूरत क्या है कि अपनी हयात में जायदाद और माल तो किसी को ना दे, बल्कि सिर्फ जुबानी या तहरीरी तौर पर यह तय कर दे कि मेरे मरने के बाद फुला वारिस को मीरास से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अखबार में बाकायदा ऐड दे देते हैं कि तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से फलाने वारिस को जो है वो आक किया जाता है। ठीक है ना, अखबार में ऐड दे देते हैं। तो अब ये अखबार जो है वो क्या करें, इस अखबार का कोई कोई हैसियत नहीं है ऐसा ऐड देने की। ठीक है, कि जो आपने जो फलां वारिस को आक करने का ऐड दे दिया ना अखबार के अंदर, इसकी कोई हैसियत नहीं। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना वो तहरीरी तौर पर कहीं पे ऐड दे दिया या किसी वसीयत डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया, या उन्होंने जो है वो लोगों को बोल दिया कि भाई मेरे मरने के बाद फलाने वारिस को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो कहते हैं कि इस तरह आक करने का शरअन कोई एतबार नहीं। ठीक है ना, यानी इट्स नल एंड वॉइड। लिहाजा इस तरह कहने या वसीयत करने के बावजूद वो वारिस मीरास से महरूम नहीं होगा। ठीक है, जब आप मर जाएंगे ना, दुनिया से आप टल जाएंगे, तो उसके बाद आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, अब जो है ना वो वापस सारी की सारी अल्लाह की मर्जी आ गई है और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस वारिस को जो है वो हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब उसके आप हवाले ना करें तो ये कब्जा ग्रुप कहलाएगा फिर, कभी कब्जा कर लिया दूसरे वारिस ने इसके ऊपर, कि अब्बा कह के गए थे कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इस वजह से हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहे। तो ये जो दूसरे वारिस हैं ये कब्जा ग्रुप वाले कहलाएंगे और इनको दूसरे के माल पे कब्जा करने का गुनाह मिलेगा। ठीक है, चलो उन्होंने क्या लिखा, फिर उनका हिस्सा भाई बहनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्टर्ब होगी, उनका हिस्सा भाई बहनों में डिस्टर्ब होगी। इनका हिस्सा क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए जरा फिर से समझ लें, मरने से पहले किसी ने अपने माल को अपने बच्चों में तकसीम कर दिया, दे दिया उनको, और एक बच्चे को नहीं दिया। ठीक है, तो वो बच्चा जो है वो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, मरने से पहले जिसको देना है आप दे सकते हैं, जितना देना है आप दे सकते हैं। ठीक है, जिस वक्त आप मर रहे हैं उस वक्त आपकी मिल्कियत के अंदर क्या चीज है जो आपने अब तक किसी और को नहीं दिया है, वो आपकी मिल्कियत में होगा ना। तो अब वो जो है वो आपके सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसको आप चाहते हैं कि आपका माल मिले, और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसको आप नहीं चाहते हैं कि आपका माल मिले। ठीक है, जिसको आप नहीं चाहते थे कि आपका माल मिले, मरने के बाद उसको भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका तरीका, अगर आप किसी को नहीं देना चाहते ना, तो आप अपनी जिंदगी में बांट दें अपना माल। फिर होगा ये कि आपके पास अब कुछ बाकी नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो जिस वक्त आप मर रहे होंगे ना, तो उस वक्त जो है ना फिर आप दूसरों के रहम करम पर होंगे। ठीक है ना, वही आपके ऊपर खर्च करेंगे, तो आपके पास कुछ होगा, आपका अपना माल कुछ भी नहीं, क्योंकि वो आप सब में बांट चुके हैं। ठीक है, लग रहा है आपको समझ में आ जाए वैसे, और क्या बताएं इसका। अच्छा क्लास में थोड़े से मिनट अभी रह गए, तो इरादा ये था कि आगे जो मुतफर्रिक मसाइल हैं ये बस थोड़े से जो है ना वो टच कर लिए जाएं, और फिर इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाए, ताकि अगले हफ्ते से आपके जो है ना वो किताबुल हिबा और ये विरासत मीरास के जो बाकी मसाइल थे वो शुरू कर दिए जाएं, और फिर रमजान मुबारक आ जाएगा तो इंशाल्लाह तो रमजान मुबारक में तो वैसे भी ये वाली क्लास खत्म हो जाती है और दरस कुरान का सिलसिला शुरू हो जाता है खाली रोजाना के अतबार से। अच्छा मुतफरक मसाइल यानी अगले पेज के ऊपर लिखते हैं कि हर हफ्ता नहा धोकर और नाप से नीचे और बगल वगैरह के बाल दूर करके बदन को साफ सुथरा रखना ये मुस्तहब है। नीज हफ्ता ना हो तो 15वीं दिन से ही, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन, इससे ज्यादा ताखीर की इजाजत नहीं है। ठीक है, अगर 40 दिन गुजर गए और ये गैर जरूरी बाल वगैरह साफ ना किए तो गुनाह होगा। ठीक है, तो अब ये चीज जो है वो यहाँ जो पे जो लिखा हुआ है उम्मीद है कि बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर जुबान के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको तो समझना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो कोताही गलती हो जाती है वो ये होती है कि औलाद को जो है ना वो ये बातें नहीं बताई जा रही होती। ठीक है, तो औलाद को बताना जो है ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, बेटे को बाप को बताना चाहिए और बेटी को जो है ये मसाइल माँ को बताने चाहिए। ठीक है, अच्छा मसला नंबर दो, अपने माँ बाप और औरत का अपने अपने माँ बाप का नाम पुकारना और औरत का अपने शौहर को नाम लेकर पुकारना मकरूह और मना है, क्योंकि इसमें बेअदबी है, लेकिन जरूरत के वक्त जिस तरह माँ बाप का नाम लेना दुरुस्त है, इसी तरह शौहर का नाम लेना भी दुरुस्त है। ठीक है, तो हमारे माशरे के अंदर अक्सर जगहों से ये वाला तो मामला अब खत्म हो गया कि शौहर का जो है वो नाम लेना बुरा समझा जाता है, अब जो है वो बहुत सारी जगहों पे शौहर का नाम लेना जो है वो इतना बुरा नहीं समझा जाता। ठीक है, माँ बाप का नाम लेना यानी उनको फर्स्ट नेम बेसिस के ऊपर पुकारना अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में एक मायूब चीज समझी जाती है, मगरबी माशरे के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पे माँ बाप को जो है वो नाम लेकर के पुकार लेते हैं, अगरचे के वहां पे भी मॉम डैड ये सब बोलते हैं, लेकिन नाम लेकर के भी वहां पे बोल दिया जाए तो कोई बुरी चीज नहीं समझ जाती। तो शौहर को नाम लेके पुकारना जहां पर मायूब अभी भी है तो वहां पर उसको बेअदबी समझा जाएगा, लेकिन जहां पर मायूब नहीं है तो वहां पर शौहर का नाम लेकर के पुकार तो सकती है, वहां पर ये देखना चाहिए कि भाई खाली नाम लेने के मामले के अंदर आपको अदब बड़ी बड़ी सूझी भी है, लेकिन जो दूसरे मामलात हैं वो उनमें आपको अदब की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप उनको जलील रुसवा करती रहती हैं, आप उनके जो है वो पूरे खानदान वालों को जो है वो बुरा भला कहती रहती हैं, उनको भी बुरा भला कहती रहती हैं, और जो है वो उनकी जो जायज़ आपसे तवक्कुआत हैं उनको भी पूरा नहीं करती हैं, राइट, जायज़ अहकाम की भी जो है वो आप कोई अतात नहीं करती हैं, लेकिन नाम लेने के बारे में आप बड़ी फिक्रमंद हैं कि जी शौहर का नाम नहीं लेना चाहिए, तो ये अकल की खराबी कहलाएगी और इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। मसला नंबर तीन, किसी जानदार चीज को आग में जलाना दुरुस्त नहीं है, जैसे भेड़ खटमल वगैरह को पकड़ कर आग में डाल देना, ये सब नाजायज है, अलबत्ता अगर मजबूरी हो कि उनको फूके बगैर काम ना चले तो भेड़ों का फूंक देना या चारपाई में खौलता हुआ पानी डाल देना दुरुस्त है। ठीक है, अब बिस्तर में कौन सा खौलता हुआ पानी कोई डाल सकता है, लेकिन ये वो बान की बनी हुई जो चारपाई हुआ करती थी तो, या अभी भी कुछ जगहों पे होती है, तो उसमें आप अगर यानी ये खटमल वगैरह जो है वो चारपाई में छुपे हुए हों उनको अब आप तो नहीं पकड़ के निकाल सकते, तो खौलता हुआ पानी डाल दिया करते थे उनको मारने के लिए, तो इसकी इजाजत है। और फूंकने का मतलब यह है कि धुएं के जरिए से, गर्म धुआं और धुएं के जरिए से जो है ना वो उनको भगाया जाए, अलबत्ता आग में पकड़ करके डाल देना ये जायज नहीं। बच्चों को इस तरह की शरारतें सूझती हैं अगर उनको उनके माँ बाप ने ये चीजें नहीं बताई हुई हो या तमीज तरीका वैसे ना सिखाया हुआ हो, तो बच्चे जो है ना वो फिर दूसरों से इस तरह की चीजें पिक कर लेते हैं और जानवरों को जो है वो अजियत देने के मुर्तकिब होते रहते हैं, तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों इस तरह की बातें समझाएं। किसी बात पर दो तरफा शब्द लगाना जायज नहीं है। जैसे कोई कहे कि शेर भर मिठाई खा जाओ तो मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा, और अगर ना खा सके तो मैं तुझसे इतने रुपए ले लूंगा, ठीक है? तो ये दो तरफा शब्द लगाना कहते हैं, ठीक है? कि जैसे कि कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब हम जीतेंगे तो तुम हमें इतने पैसे दोगे, और अगर तुम जीतोगे तो हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। ये दो तरफा शर्त लगाना है, ठीक है? लेकिन जब दोनों तरफ से शर्त ना हो बल्कि एक तरफ से खालिश शर्त हो, क्या मतलब? एक तरफ से जो शर्त का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया ना, इसको आप इनाम भी कह सकते हैं, रिवॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है? तो रिवॉर्ड तय करना, इनाम तय करना, ये जायज कि जैसे जो भी जीतेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा, ठीक है? तो वो जो इनाम है वो दूसरी टीम वाले भी दे सकते हैं, ठीक है? कि अगर हमारी टीम जीतेगी ना तो आप हमें इतना इनाम दें, सही है? तो ये जो है वो जायज है, ठीक है? एक तरफा शब्द जो है ना वो जायज है। मसला नंबर 5, या कोई तीसरा बंदा कहते हैं कि भाई आप में से जो भी जीतेगा मैं उसको इनाम दूंगा, ठीक है? तो ये चीज जायज है। जब दो आदमी अलग बातें कर रहे हों तो उनके पास नहीं जाना चाहिए, छुप कर उनकी बातें सुनना बड़ा गुनाह है, ठीक है? खुसूसन जब लोग बैठे हों किसी मजलिस के अंदर और दो लोग जो है वो ऐसे बात कर रहे हों कि जिससे देख करके आपको अंदाजा हो जाए कि वो बस आपस में ही बात कर रहे हैं और इतनी हल्की आवाज में बात कर रहे हैं कि दूसरों को सुनाई ना दे, तो अब उनके करीब जाकर के बैठना या उनकी जो है वो जस्तजू में लगना कि वो क्या बातें कर रहे हैं, ये चीज बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, हदीस शरीफ में आया कि जो कोई दूसरों की बात की तरफ कान लगाए और उनको नागवार हो तो कयामत के दिन उसके कान में गरम गरम सीसा डाला जाएगा। इससे मालूम हुआ कि शादी ब्याह में दुल्हा दुल्हन की बातें सुनना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है? ये तो बाकायदा कुरान मजीद में अल्फाज भी है ना इसके, वला तजस्सुस, कि तुम तजस्सुस ना करो, ठीक है? मियाँ बीवी के आपस में तन्हाई के अंदर जो बातें होती हैं वो किसी और से कहना बड़ा गुनाह है। हदीस में आया है कि इन भेदों के बतलाने वाले पर अल्लाह ताला का गुस्सा और गजब सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? यानी मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात हैं, वो बीवी जा करके किसी को बताए या मियाँ जा करके किसी को बताए तो ये यानी बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है? और इसके ऊपर जो है ना अल्लाह ताला का गजब और गुस्सा होता है। ऐसे बेगैरत मर्द भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ऐसे भी बेगैरत मर्द मौजूद हैं जो कि अपनी बीवी के साथ गुजरे हुए जो लम्हात होते हैं वो अपने दोस्तों में जाकर के बताते हैं। लेकिन हमारा ख्याल है कि उनकी तादाद जो है ना वो ओवरऑल कम है, ठीक है? लेकिन औरतों में ये इस लेवल की डिस्कशन जो है ना ये बहुत ज्यादा आम है, ठीक है? औरतों में इस तरह की डिस्कशंस काफी ज्यादा आम है, तो वो फिर इस तरह की बातें जो है ना वो कर लेती हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो उसके फिर कभी जो है ना वो बहुत खतरनाक उसके नतीजे निकलते हैं, बहुत खतरनाक, क्योंकि आप जिस बता रही हैं वो अगर यानी या तो आपकी दिल यानी आपकी उसके दिल में कोई नफरत है, कोई इंतकाम का जज्बा है और आपको पता नहीं है कि उसके दिल में नफरत का जज्बा है आपके खिलाफ और आप उसको अपना दोस्त समझ के बैठी हुई हैं, तो फिर ऐसी जो औरत होगी ना फिर वो किसी ना किसी को बताएगी आपकी बताई हुई बात है। कुछ लोग नफरत की वजह से बताते हैं, कुछ लोग जो है वो बेवकूफ़ी की वजह से जो ऐसी रास की बातें कोई भी उनको बताता है ना, वो फौरन उनके पेट में ये चीज अब नहीं रह सकती, उनके पेट में दर्द होता रहता है जब तक कि वो किसी तीसरे शख्स को जो है ना वो जाके बात ना बता दे, ठीक है? और ये उनकी यानी बदअखली की वजह से ऐसा होता है, ठीक है? तो फिर अब ये बातें जो है ना वो फिर जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं और बिलाखिरी होते होते जो है वो शौहर तक भी पहुंच जाती हैं या शौहर के घर वालों तक पहुंच जाती हैं, और इससे जो है ना फिर शौहर को जो है वो इतना ज्यादा बुरा लगता है कि तलाक तक नौबत आ जाती है, ठीक है? तो इस मामले में बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ अगर आपको मशवरा करना है, किसी चीज में आपको जो है वो इल्म हासिल करना है, सीखना है, तो उसके लिए सिर्फ किसी ऐसे शख्स को बताएं कि जो के अहले इल्म हो और जो के यानी अकल समझ वाला भी हो और आपके साथ बिल्कुल खैर ख्वाह हो, आप 100% कंफर्म हो कि ये खैर ख्वाह इंसान है, ठीक है ना, उससे भी सिर्फ सीखने की नीयत से कोई बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ इल्म हासिल करने की नीयत से कोई बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्तें याद रखें, एक तो वो 100% कंफर्म हो कि वो बदख्वाह इंसान नहीं हो सकता आपका, ठीक है ना, जैसे बच्ची की माँ, ठीक है ना, या बड़ी बहन कोई, ठीक है, या कोई ऐसी इल्म रखने वाली खातून जिसका कि आपके साथ कोई जाती बुगज और इनाद का मुमकिन नहीं ना हो, ठीक है, अकल समझ वाली हो, बेवकूफ ना हो कि जिसके पेट में जो है ना दूसरों की बातें सुन करके सब पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसी कोई चीज ना हो, ठीक है, तो इन शराइत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, वरना तो बिल्कुल भी किसी से इस किस्म की कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से लोगों को बिल्कुल उन बातों का ध्यान नहीं होता और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो उनके खानदानों में यानी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और तलाकें भी हो जाती हैं उसकी वजह से, किसी के साथ ऐसा हंसी मजाक करना जिससे उसको तकलीफ हो जायज नहीं है, तो कुछ लोगों की आदत होती है हर वक्त छेड़खानी करने की और वो फिर जब बड़े हो जाते हैं उनकी शादी हो जाती है अल्लाह उनको औलाद दे देता है तो वो अपने औलाद के सामने भी इस तरह की छेड़खानियां करते रहते हैं, औलाद भी उनसे सीख लेती है, हर वक्त किसी के साथ कुछ ना कुछ जो है ना वो बोलना है, किसी ना कुछ कॉमेंट देना है, कुछ ना कुछ कहना है, ठीक है, तो ऐसी आदतें जो है वो उनको खत्म करने की जरूरत होती है, ठीक है, वरना आप भी किसी की अजियत का सबब बनेंगे, फिर आपसे जो लोग सीखेंगे वो भी जाकर के किसी की अजियत का सबब बनेंगे, ठीक है, मुसीबत के वक्त मौत की तमन्ना करना या अपने आप को कोसना दुरुस्त नहीं है, फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ये कोसने वोसने के चक्कर में भी बहुत सारे फंसे रहते हैं, शतरंज ताश वगैरह खेलना दुरुस्त नहीं है और अगर शर्त लगाकर खेले तो ये जुआ भी है, ठीक है, शतरंज जो है ये हदीस मुबारक में सराहतन शतरंज को जो है वो मना किया गया, तो इस वजह से शतरंज जो है ना यानी जिसको चेस कहते हैं ये इसको जायज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, बहुत सारे लोग तुले हुए हैं इस बात के ऊपर कि शतरंज खेलने से जो है वो अकल तेज होती है और आपको प्लानिंग आती है और आपको जो है वो एनालिटिकल स्किल्स आती है, जो भी अपनी तरफ से वो करते रहे हमने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो है वो कुरान हदीस के ऊपर अमल करना है, हमने अपनी अकल, अगर हमारी अकल काफी होती हमारी हिदायत के लिए तो ना कुरान की जरूरत थी, ना हदीस की जरूरत थी, ना किसी रसूल की जरूरत थी, किसी की जरूरत नहीं थी, अगर मेरी अकल काफी थी ना तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं थी, दीन तो शुरू ही इस बात से होता है कि अकल काफी नहीं है, जब अकल काफी नहीं है ये बात तय कर ली कि अकल काफी नहीं है तब फिर शतरंज से अकल तेज होती है, अल्लाह के बंदे जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि शतरंज नहीं तो फिर अकल तेज हो या नकल तेज हो जो भी तेज हो हमें नहीं चाहिए ऐसी तेजी, हमें नहीं चाहिए ऐसी तेजी अकल की, ठीक है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता और वो खेलते भी हैं खिलाते भी हैं, बल्कि जो एक किसी ने जो है वो ये वीडियो बना ली कराची में कोई स्कूल खुला है और वहां पे जो है ना वो शतरंज के जरिए से बच्चों को तालीम देते हैं, अब बड़े बड़े दीनदार लोग जो हैं वो वाह वाह करे चले जा रहे हैं, दीनदार क्या मतलब बगैर इल्म वाले दीनदार जो होते हैं वाह वाह किए चले जा रहे हैं कि क्या कितने तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट स्कूल है जी, चेस के जरिए से जो है वो बच्चों को की तालीम और तरबियत होती है उनके, ठीक है, तो शतरंज जायज नहीं है, भाई बचपन में गलती कर ली गुनाह कर लिया तो अब तौबा करें उसके ऊपर माफी मांगे अल्लाह ताला से और देन यू नो गो ऑन विद योर लाइफ मूव ऑन, अगर शर्त लगाकर खेले तो ये जुआ भी बन जाता है, तो जुआ तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल गुना बन जाता है अगर उसके साथ उसके अंदर शर्त लगा ले, ठीक है, ऐसी सूरत में दुगना गुना होगा यानी शतरंज का गुना अलग और जुए का गुना अलग, ठीक है, ताश भी जो है ना वो भी इसी इसी उसके ऊपर भी यही हुक्म है, अलबत्ता ये जो लूडो वाला गेम है ना लूडो लूडो जिसको कहते हैं कुछ लोग LUDO उसके अंदर होता है वो बांसा, ठीक है, डाइस जिसको कहते हैं, ठीक है, ये लूडो जो है इसमें तफसील है, ये लूडो सराहतन नाजायज नहीं है, कुछ लोग इसको नाजायज कहते हैं लेकिन ये सराहतन नाजायज नहीं है, ये डिपेंड करता है कौन कर रहा है, ठीक है, ये जो एक हदीस मुबारक है ना, वो पासे के बारे में, डाइस के बारे में, वो एक अलग खेल है जिसको के नर्द शेर कहते हैं, नर्द शेर, ठीक है। उसमें बड़ी सारी, उसमें बड़ी तहकीक करी है उलमाए कराम ने। नर्द शेर जो है ना, वो भी उसी तरह हराम है जिस तरह शतरंज, लेकिन लूडो उस हुक्म में नहीं आता। लूडो का मामला ये है कि अगर वो लहवो लाप के तौर पे खेला जा रहा है, जैसे कि मर्द हजरात बैठ करके लूडो खेल रहे हैं, तो भाई आपके लिए जायज नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे जो है ना, वो कोई वो लूडो खेल रहे हैं, या वो कोई किसी को अजियत पहुंचाने के बजाय आपने उनको लूडो के ऊपर लगा दिया, उनके साथ ऐसा मामला नहीं है। तो लूडो को हराम कहने वाले जो है ना, हम उनसे इत्तेफाक नहीं करते जो लूडो को बिल्कुल हर सूरत में हराम कहते हैं, नहीं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस किस्म की सिचुएशन के अंदर लूडो को खेला जा रहा है। उस हदीस की वजह से लूडो को हराम नहीं किया जा सकता जिसके अंदर के डाइस का जिक्र आए, क्योंकि वहां पे एक दूसरे गेम का जिक्र असल में जिक्र है, ठीक है, जिसको नट शेयर कहा जाता है। बहरहाल, तो ये मसला नंबर 10 तक हमने आज पढ़ लिया, और आपकी पिछली एक दूसरी क्लास से जो है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दिए, तो फिर उनकी मौलवा से माजत के साथ हम यहाँ पे अपनी क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।